हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद आठवां अध्याय श्लोक संख्या 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं धराति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति, गोपेश गोपिका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरंगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि चिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। पहला स्कंद आठवां अध्याय जिसका शीर्षक है महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक नंबर 11, कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूत उवाच उपधार्य वचस्तस्या, भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवम् इदं कर्तुम् द्रोणैरस्त्रम् अबुध्यत। उपधार्य वचस्तस्या भगवान भक्तवत्सलः अपाण्डवम् इदं कर्तुम् द्रोणैरस्तम् अभुध्यत उपधार्य वचस्तस्य भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवम् इदं कर्तुम् द्रोणैरस्त्रम् अबुध्यत। शब्दों का अर्थ सूत उवाच। सुत गोस्वामी ने कहा उपधार्य मतलब धैर्य पूर्वक सुनकर धैर्य धारण करके वचस मतलब शब्द तस्य मतलब उसके तो किसके जो अभी जैसे हम पढ़ रहे हैं कि भगवान जब विदा ले रहे थे तो उसी समय उत्तरा भागती भागती भगवान के पास आई और क्या कहने लगी पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वदा भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम के क्योंकि आप महायोगी हैं केवल आप ही शरण लेने योग्य हैं केवल आप ही जगत का पालन करने वाले हैं इस संसार में आपके अतिरिक्त और कोई भी ऐसी जगह नहीं है आपके चरणों के अतिरिक्त जहाँ पर जीव को सुरक्षा प्राप्त हो सके इसलिए मैं आपकी शरण में आई हूँ। और आगे कहा अभिद्रवति मामीश शरस्तप्ता यसो विभु कामं दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। अगर आपकी इच्छा हो तो इस भड़कते हुए लोहे जो आ रहा है लोहे का गोला मेरी ओर आप बलि इससे कामं दहतु माम नाथ आपकी इच्छा तो मुझे मार डालो लेकिन मामे गर्भो निपात्यताम लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा करो मेरे गर्भ में आपका जो भक्त पल रहा है उसकी सुरक्षा करो क्योंकि आप ही अपने भक्तों की सुरक्षा करने वाले भगवान बहुत ही शांति के साथ अश्वत्थ उत्तरा की ये प्रार्थना सुन रहे थे इसलिए यहाँ पर सूत गोस्वामी कहते हैं उपधार्य वचस्तस्या भगवान भक्तवत्सलः क्योंकि भगवान अपने भक्तों पे कि इतना प्रेम करते हैं अत्यंत ही प्रेम से भक्तवत्सला भगवान भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि भगवान सुन रहे थे और हृदय में भगवान की ऐसी भावना आ रही थी कि उत्तर तुम्हें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है मैं मेरा होना मैं इसीलिए तो हूँ यहाँ पर कि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं, तुम्हारी संतान की रक्षा करूं, क्योंकि मेरे भक्तों के ऊपर यदि कोई कष्ट आता है तो उसके लिए फिर मेरे भक्तों को मुझसे प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि मेरा कर्तव्य है मेरा एकमात्र यही कर्तव्य है कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करूं, मैं अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए ही तो हूँ यहाँ पर। तो क्योंकि भगवान भक्तवत्सल है और क्या हो रहा था अपाण्डवम् इदं कर्तुम् अपाण्डवम् अपाण्डवम् मतलब कि पांडवों का सर्वनाश कि जो संसार है उसको पांडवों के वंशजों से बिल्कुल उससे रिक्त कर देना अपाण्डव मतलब संसार में पांडव कहीं रहेंगे नहीं कर्तुम् मैं ऐसा करूंगा कौन कह रहा है द्रोणैरस्त्रम् उभद्यत अबुध्यता द्रोणैर का मतलब होता है द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा जिसकी इतना अपमान हुआ था बाल काटे गए थे मणि निकाली गई थी तो भगवान उपधार्य का मतलब होता है धैर्य पूर्वक सुना भगवान ने और तुरंत ही अबुध्यता मतलब भगवान फौरन समझ गए जैसे ही उत्तरा भगवान के सामने भाग भाग कर आ रही थी तो भगवान उसकी बात सुन रहे थे लेकिन यहाँ पर सूत गोस्वामी ने लिखा है द्रोणैरस्त्रम् अबुध्यते लेकिन उसकी बात सुनते ही उसको पहले से ही भगवान ने समझ लिया कि ये अवश्य ही उस अश्वत्थामा की कारस्थानी है, क्योंकि वो जानते थे भगवान के अश्वत्थामा जिसका इतना अपमान किया गया है वो उसका बदला लेने के लिए आया। तुरंत ही भगवान समझ गए कि ये अश्वत्थामा का ही फेंका हुआ ब्रह्मास्त्र है जो कि अब पांडवम इदम करतम, जिसकी ये इच्छा है कि इस संसार को पांडव से विहीन कर दे। परंतु जिसके साथ भगवान है वो उसका संसार कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मारे कृष्ण राखे कौन, राखे कृष्ण तो मारे कौन। अगर संसार की सारी शक्ति एक साथ मिलकर उस व्यक्ति का वध करने की इच्छा करे जिसे भगवान सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो उस वो सारी शक्ति त्रिलोक की शक्ति भी उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती जिसका कि भगवान, जिसको भगवान अपनी प्रोटेक्शन में रखते हैं। तो भगवान उत्तरा की बात सुनते हैं। अनुवाद, सूत गोस्वामी ने कहा, उसके वचनों को धीरज के साथ सुनकर अपने भक्तों के प्रति सदैव अत्यंत ही वत्सल रहने वाले भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश के अंतिम प्राणी को समाप्त करने के लिए यानी निर्बीज करने के लिए ही यह ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। भगवान सभी तरह से निष्पक्ष हैं, तो भी वे अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए इसकी नितांत आवश्यकता है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, हर एक व्यक्ति का कल्याण इस बात से है कि भगवान के भक्तों की सुरक्षा हो। भगवान के भक्तों, भगवान अपने भक्तों का पक्ष इसलिए लेते हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण इसी से है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक इस संसार में भक्त हैं, तभी तक अन्य प्राणियों की रक्षा हो सकती है। यानी अब जैसे राज्य किसको मिलने वाला था, अब क्योंकि पांडव जीत गए थे लेकिन उनके वंश में कोई नहीं था, तो यदि कोई भगवान का भक्त ही इस राज्य को चलाएगा तो ही समस्त प्रजा की रक्षा होगी। तो समस्त प्रजा का कल्याण इस बात पे था कि उत्तरा के गर्भ की बालक की रक्षा हो। तो यहाँ पर भगवान को भक्त वत्सल कहा गया क्योंकि वो अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं, बहुत प्रेम करते हैं और अपने भक्तों का विनाश करने कभी नहीं देते। भगवान ने कह दिया भगवद गीता में, कौन्तेय प्रतिजानेह नमे भक्तः प्रणश्यति। अर्जुन निश्चय पूर्वक घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। अर्जुन ने कहा, आप भगवान हो, इतने सारे श्लोक बोल रहे हो, ये बात भी आप खुद ही बोलो ना, मुझे क्यों कह रहे हो कि मैं बोलूं। तब भगवान ने कहा, देखो अर्जुन, तुम मेरे भक्त हो ना, तुम अगर कोई बात कहोगे तो उसको सिद्ध करने के लिए मैं दुनिया इधर की उधर कर दूंगा। मेरा भक्त, मैं अपनी बात, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मानना टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। मेरी बात तो हो सकता है कभी मैं अपनी बात का खंडन कर दूं। जैसे उन्होंने इस बात का ये बात युद्ध शुरू होने से पहले ये विचार किया था और सबसे कहा भी था कि मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन बीच में पितामह ने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं भगवान से अस्त्र उठा के रहूंगा। भगवान ने क्या प्रतिज्ञा की थी, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन बीच में पितामह चूंकि भगवान के भक्त थे तो उनकी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। इसलिए अर्जुन को बोला, मैं बोलूंगा तो हो सकता है किसी सिचुएशन में आकर मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूं, लेकिन तुम क्योंकि मेरे भक्त हो, एक बार तुमने कह दिया नमे भक्त प्रणश्यति, तो फिर ये बात एकदम सिद्ध करके दिखाऊंगा कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। इसी श्री प्रभुपाल जी आगे कहते हैं, पांडव कुल भक्त कुल था, अतः भगवान चाहते थे कि वह संसार के ऊपर शासन करे। यही कारण था कि दुर्योधन दल के शासन को समाप्त करके उन्होंने महाराजा युधिष्ठिर को शासन स्थापित किया। इसीलिए वे गर्भ में स्थित महाराजा परीक्षित की रक्षा करना चाह रहे थे। वे ये नहीं चाहते थे कि संसार पांडव कुल के विहीन हो जाए जो भक्तों का आदर्श कुल था। भगवान चाहते थे कि पांडवों की ख्याति हो, पांडवों की कीर्ति हो और संसार में जितने भी लोग थे उस समय उनके लिए अगर कोई कल्याणकारी बात थी ना उस समय तो यही थी कि पांडव कुल का कोई वंशज है वो राज्य करे। तो भगवान समस्त प्राणियों का कल्याण करते हैं अपने भक्तों के माध्यम से। अगर भक्तों का कल्याण है तो समझो सबका कल्याण होगा। अभी भगवान इस तरह सोच ही रहे थे, सिर्फ अभी भगवान ये विचार ही कर रहे थे कि अश्वत्थामा ने तीर फेंका है और वो सबको सब पांडवों को वंश विहीन करना चाहता है। तभी अचानक से 5 बाण पांडवों की तरफ आए और जिस समय उत्तरा अभी ये प्रार्थना कर रही थी और भगवान उत्तरा की बात सुन रहे थे, सारे जो पांडव थे उनका उनकी पूरी मति जो है उस समय भगवान में लगी हुई थी। वो पूरा कब, क्योंकि भगवान कृष्ण उनको प्राणों से भी अधिक प्रिय थे और कृष्ण जा रहे थे, सब उनको विदा करने के लिए वहां पर आई थी। कुंती महारानी भी आई थी, द्रौपदी भी आई थी और सुभद्रा भी वहां पर थी, सारे पांडव भी वहां खड़े थे तो भगवान को विदा कर रहे थे। तो पूरा का पूरा भगवान के ऊपर ही उनका कंसंट्रेशन था कि भगवान को अभी विदा करें। कोई यहाँ पर युद्ध करने के लिए नहीं आए थे, अपना अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं आए थे और ना ही तैयार थे युद्ध के लिए और ना ही उन्हें ऐसा संकेत भी था कि यहाँ पर भी कोई हमें हमारे ऊपर वार करेगा। लेकिन अचानक से जब भगवान जा रहे थे अभी वहां पर सबसे सुंदर बात क्या थी कि संकट मोचन अभी तक वही थे, कृष्ण अभी तक वही थे जो समस्त संकटों को समाप्त करते हुए आए अब तक। तो यदि कृष्ण उस समय चले गए थे तो निश्चित था कि इस समय संपूर्ण पांडव कुल विहीन हो जाता है ना, क्योंकि 5 तीर अभी पांडवों की ओर आ रहे, एक गर्भ में परीक्षित बैठा हुआ है उनकी ओर ब्रह्मास्त्र चला गया। अब तो संभव ही नहीं था, कृष्ण के अतिरिक्त और कोई भी उनकी रक्षा कर ही नहीं सकता था। आगे कहते हैं सुत गोस्वामी, श्लोक नंबर 12, तर्हि वाथ मुनि श्रेष्ठ पांडवा पंचसायकान् आत्मनो भीमुखान् दीप्तान् आलक्ष्यास्त्राण्युपाददु। तर्हि वाथ मुनि श्रेष्ठ पांडवा पंचसायकान् आत्मनो भीमुखान् दीप्तान् आलक्ष्यास्त्राण्युपाददु। तर्हि वाथ मुनि श्रेष्ठ पांडवा पंचसायकान् आत्मनो भीमुखान् दीप्तान् आलक्ष्यास्त्राण्युपाददु। तर्हि वाथ मुनि श्रेष्ठ, यानी सूत गोस्वामी उन सब मुनियों को बोल रहे हैं, हे मुनि श्रेष्ठो, तर ही वात यानी तब भी उस समय अथ अतेव पांडवा पंच सायकान, पांडवों के पुत्रों की ओर पंच यानी 5 सायकान यानी हथियार उस समय, और वो कैसे हथियार थे जो उनकी ओर आ रहे थे, पंच सायकान कैसे थे, आत्मनो भी मुखान दीप्तान, दीप्तान का मतलब होता है बिल्कुल अग्नि की ज्वाला की तरह लप लपाते हुए, एकदम भड़कते हुए अग्नि के जैसे हमारे ऊपर गोले आ रहे हो। आत्मनो भी मुखान यानी हमारी ओर, वो उनकी ओर आ रहे थे पांडवों की ओर, और आलक्षास्त्राण युपाददु, अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है, कैसे अस्त्र हैं, क्यों आ रहे हमारी ओर, लेकिन क्योंकि क्षत्रिय थे किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन कैसा अस्त्र है, लेकिन पांडव तो क्षत्रिय थे तो उन्होंने क्या किया, अस्त्राण युपाददु, अपने अपने जितने भी अस्त्र ग्रहण किए उठाया, जैसे अर्जुन ने अपना गांडी उठाया और भीम ने अपनी गदा उठाई, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे अस्त्र हैं जो इतना तेजी से हमारी ओर आ रहे, उनका शमन कैसे करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और ना ही उन्होंने भगवान से कोई प्रार्थना की, लेकिन भगवान जानते थे कि ये ब्रह्मास्त्र है और इसका शमन अभी ये लोग इस सिचुएशन में नहीं कर सकते, इनके पास अभी इतना समय नहीं है, ये युद्ध के लिए तैयार नहीं है। तो कृष्ण को बिल्कुल किसी ने प्रार्थना भी नहीं की क्या करना, लेकिन कृष्ण क्या करते हैं, अनुवाद देखिए। हे विचारकों, मुनियों में अग्रणीय शौनक जी, यानी कि सूत गोस्वामी शौनक जी को वहां पर स्टोरी सुना रहे हैं कि उस लपलपाते ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखकर पांच पांडवों ने अपने अपने पांच हथियार संभाले। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र परमाणु हथियारों से भी श्रेष्ठ होता है। एटम बम जो होता है ना, उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। अश्वत्थामा ने महाराज युधिष्ठिर आदि पांच पांडवों तथा उत्तरा के घर में स्थित एकमात्र पौत्र को मारने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। अतएव यह ब्रह्मास्त्र जो परमाणु हथियार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली तथा श्रेष्ठ होता है, परमाणु बमों की भांति अंधा नहीं था। यानी कि जो आजकल एटम बम होते हैं, उनको कुछ खबर नहीं होती है कि हमें किसको मारना है। बस वो बम फेंक दिया, अब जो भी है मरेगा। उस वो नहीं देखते कि अपराधी है निरापराध है, इसको लक्षित। लेकिन ये जो ब्रह्मास्त्र है, उसको जिसको लक्ष्य करना होता है उसी को मारता है वो। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते परमाणु बमों की तरह वो अंधा नहीं था। जब परमाणु बम छोड़ते हैं तो वे लक्ष्य तथा अन्य वस्तुओं के में अंतर नहीं कर पाते। ये बम मुख्य रूप से निर्दोषों को कोई हानि पहुंचाते हैं, क्योंकि इन पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। लेकिन ब्रह्मास्त्र ऐसा नहीं होता है, यह लक्ष्य को पहचानता है और निर्दोष को हानि पहुंचाए बिना ही आगे बढ़ता है। यानी कि और भी वहां पर बहुत सारे सब लोग खड़े थे ना, कुंती महारानी खड़ी थी, सुभद्रा खड़ी थी, द्रौपदी खड़ी थी, कृष्ण थे, लेकिन क्योंकि ब्रह्मास्त्र को भेजा गया था केवल पांच पांडवों और उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित महाराज पल रहे थे उनको मारने के लिए, तो ब्रह्मास्त्र केवल उन्हीं की ओर आ रहे थे। और उस समय आगे कहते हैं सूत गोस्वामी, श्लोक नंबर 13, व्यसनम वीक्षतत्तेषाम अनन्य विषयात्मनाम सुदर्शनेना स्वास्त्रेण स्वानाम रक्षाम व्यदाद्विभु। व्यसनम वीक्षतत्तेषाम अनन्य विषयात्मनाम सुदर्शनेना स्वास्त्रेण स्वानाम रक्षाम व्यधात्विभु। व्यसनम वीक्षतत्तेषाम अनन्य विषयात्मनाम सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानाम रक्षाम व्यधात्विभु। व्यसनम वीक्षतत्तेषाम, व्यसनम मतलब भगवान ने देखा कि ये तो बहुत ही महान संकट है, ब्रह्मास्त्र चलाया है और ब्रह्मास्त्र अपने लक्ष्य को बेदे बगैर कभी भी नहीं आता, और इस समय अर्जुन दूसरा ब्रह्मास्त्र भी नहीं चलाने की स्थिति में नहीं है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं तत्तेषाम, यानी उनके ऊपर बहुत ज्यादा बड़ा संकट था। और अनन्य विषयात्मनाम, अत्यंत ही सुंदर यहाँ पर सूत गोस्वामी शब्द कह रहे हैं अनन्य विषयात्मना, कि उन सबको अभी कुछ सूझ ही नहीं रहा था। क्यों नहीं सूझ रहा था? अनन्य, क्योंकि उनका पूरा अनन्य भाव से उनका विषय एकमात्र कृष्ण था। कृष्ण के अतिरिक्त उनका मन और कहीं भी नहीं था। उस समय केवल कृष्ण के विषय में ही सब सोच रहे थे, क्योंकि वो तो इतने दुखी हो थे सब और इतना रो रहे थे, भगवान को विदा करने के लिए यहाँ पर आए थे। युद्ध की उनको कोई तैयारी नहीं थी यहाँ पर, और ना ही युद्ध की कोई आशंका थी, ना ही वो इस उनको ऐसा कोई भान भी नहीं था कि यहाँ पर भी अस्त्र चलेगा और हमें उनका प्रतिकार करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य ये था कि उनकी मति भगवान में लगी हुई थी, भगवान उनके समक्ष थे और भगवान जिनके साथ हों, भगवान का सानिध्य इस बात की गारंटी है कि आपकी अहानि मतलब आपकी हानि हो ही नहीं सकती। आपको कष्ट कोई भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, कोई भी कष्ट उस जीव को जीव का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता जिसकी सहायता स्वयं साक्षात भगवान, और यही भगवान की भक्त वत्सलता है। चाहे दिन हो या रात हो, जंगल हो या घर हो, कहीं भी भक्त हो, चाहे कोई भी सिचुएशन में हो, भक्त अगर कभी संकट उसके ऊपर आता तो भगवान भक्त की प्रार्थना की का प्रार्थना के लिए उपेक्षा नहीं करते कि अभी मुझे भक्त मेरी प्रार्थना करे कि भगवान आप इस मेरी रक्षा कीजिए या मेरी संतान की रक्षा कीजिए या फिर आप हमारी सहायता कीजिए। भगवान को भगवान प्रेम करते हैं अपने भक्त से। क्या भगवान को नहीं खबर है मेरे भक्त का किसमें भला है? क्या भगवान नहीं जानते हैं? भगवान के पास बुद्धि नहीं है, वो ये देख नहीं रहे हैं कि मेरे भक्त के ऊपर संकट आया है? एक भक्त जो अपना पूरा का पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर रहा है, अपनी समस्त खुशियों को भगवान के ऊपर न्यौछावर कर रहा है, क्या भगवान को पता नहीं है उसका श्रेय क्या है? तो यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि पांडवों ने कोई उत्तर आने भगवान से भले प्रार्थना की थी कि मेरे पुत्र की रक्षा करो, लेकिन क्या उत्तर अगर प्रार्थना नहीं करती तो भगवान उसको मरने देते थे परीक्षित को? इसे भक्तों को ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान जो भी करेंगे वो अवश्य हमारे हित में ही होगा। विश्वास सरेंडर शरण में आने का मतलब क्या है कि भगवान तुम जो कर रहे हो, तुम जो चाह रहे हो उसी में मेरा भला है, और तुम जो कर रहे हो वही मेरे लिए बेहतर है। मैं जो प्रार्थना करूं या जो मेरी प्लानिंग हो सकता है उसमें बहुत त्रुटि हो क्योंकि आप भूत भविष्य और वर्तमान को समझते हो, लेकिन आप जो भी करोगे अवश्य उसमें भक्त की कभी भगवान हानि चाहेगा? भगवान से भक्त इतना प्रेम कर रहा है, क्या भक्त को इतना विश्वास नहीं होना चाहिए कि भगवान अवश्य मेरी, भक्त को केवल इतना विश्वास अपने हृदय में होना चाहिए अवश्य रक्षेभे कृष्णा, मेरे अंदर भले ही प्रार्थना करने का, भले मुझे प्रार्थना करने नहीं आ रही है, भले मुझे कोई भी भक्ति का क्वालिटी नहीं है मेरे अंदर, मुझे अगर कुछ है तो केवल और केवल कृष्ण के ऊपर अपूर्ण विश्वास, दृढ़ विश्वास है कि कृष्ण मेरे कभी भी मेरा हानि नहीं करेंगे, मेरा अहित नहीं करेंगे, कृष्ण जो भी मेरे लिए प्लानिंग करेंगे वही मेरे लिए बेहतर होगा। तो यहाँ पर पांडवों ने कोई भगवान से प्रार्थना नहीं की कि कृष्ण अभी देखो पता नहीं कौन से बाण आ रहे हैं, आप कृपा करके इन बाणों का शमन कीजिए, लेकिन भगवान ने क्या व्यसनम वीक्ष तत्तेषम, बस उन्होंने खाली देखा कि संकट मेरे बच्चों के ऊपर आ रहा है और वो केवल मेरे अनन्य विषयात्मना, और वो केवल मुझ पर ही निर्भर है, मेरा अतिरिक्त उनका कोई और नहीं है जो उनकी रक्षा करेगा। तो सुदर्शनेन स्वास्त्रेण, स्वास्त्रेण का मतलब होता है अपना निजी अस्त्र, भगवान का अपना अस्त्र जिसका नाम है सुदर्शनेन, स्वानाम रक्षाम व्यदाद विभु, और उसी सुदर्शन चक्र से भगवान ने पांडवों पर जो संकट आ रहा था उससे उनकी रक्षा, स्वानाम का मतलब होता है अपने भक्तों की, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करेंगे। और उसी समय उन्होंने क्या किया, सुदर्शनेन स्वास्थ्येन स्वानाम रक्षाम युद्धात् विभु, उसमें भगवान ने अपने, क्योंकि भगवान विभु हैं, भगवान सर्वशक्तिमान है, वो ये नहीं सोच रहे थे कि अच्छा अभी तो मैं कैसे रक्षा करूं पांडवों की, मुझे तो उत्तरा ने प्रार्थना की है, मुझे पहले उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, है ना? यहाँ पर ये बात समझने की है, उधर से उत्तरा के गर्भ में सुदर्शन ब्रह्मास्त्र चलाया गया है और इधर से 5 बाण आ रहे हैं पांडवों की ओर, लेकिन यहाँ पर सूत गोस्वामी ने भगवान को विभु कहकर पुकारा है। विभु का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, भगवान को एक समय में एक कार्य करने का, खाली जिस तरह से मनुष्य एक समय में एक ही कार्य कर सकता है, भगवान ऐसे नहीं है, भगवान एक समय में करोड़ों लोगों को एक साथ, सारे संसार पे यदि एक साथ विपत्ति आ जाए, चाहे वो कोई भी कंट्री में रहता हो, भगवान के पास इतनी शक्ति है कि वो हर जीव की रक्षा कर सकता है। ऐसे नहीं है कि भगवान पहले कराची में कोई आएगा उसकी रक्षा करेगा, फिर दूसरी जगह पे कोई आएगा उधर भाग के जाना पड़ेगा वहां पर रक्षा करेगा, फिर दूसरे कोई प्रार्थना करना है तो वहां। भगवान विभू है, भगवान एक साथ सबकी सुरक्षा कर सकते हैं। तो यहाँ पर सुध गोस्वामी बता रहे हैं ऋषियों को कि भगवान ने क्या किया, अपने सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मा उन पांच हथियारों का शमन किया जो पांडवों की ओर आ रहे थे, और उसी समय भगवान उत्तरा के घर में भी प्रवेश कर गए और वहां पर उसके गर्भ यानी परीक्षित महाराज की रक्षा की। अनुवाद। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने यह देख कर कि उनके अनन्य भक्तों पर जो कि पूर्णतया उनके शरणागत थे महान संकट आने वाला है, उनकी रक्षा के लिए तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी फरमा रहे हैं, बता रहे हैं कि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र परमाणु अस्त्र के समान तो था, लेकिन उसमें तेज तथा उष्मा अधिक थी। यह ब्रह्मास्त्र अधिक सूक्ष्म विज्ञान की देन है, जो वेदों में अंकित एक मंत्र का प्रतिफल है। इस अस्त्र का दूसरा गुण यह है कि यह परमाणु अस्त्र के समान अंधा नहीं होता, क्योंकि इसे लक्ष्य पर ही संधान किया जा सकता है। अश्वत्थामा ने इसे पांडव कुल के समस्त पुरुष व्यक्तियों को समाप्त करने के लिए छोड़ा था, अतः एक तरह से यह परमाणु बमों से अधिक घातक था, क्योंकि यह सर्वाधिक सुरक्षित स्थान में भी प्रवेश कर सकता था और लक्ष्य से कभी नहीं चूकता था। यह सब जानते हुए भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अपना निजी अस्त्र उठा लिया, क्योंकि ये भक्त कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते थे। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप से वचन दिया है कि उनके भक्त कभी भी विनष्ट नहीं हो सकते। वे भक्तों द्वारा की गई सेवा की मात्रा या गुण के आधार पर कार्यवाही करते हैं। यहाँ पर अनन्य विषयात्मनाम शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि पांडवगढ़ स्वयं महान योद्धा होते हुए भी भगवान की सुरक्षा पर शत प्रतिशत आश्रित थे। लेकिन भगवान हैं कि बड़े से बड़े योद्धाओं की उपेक्षा करके क्षण भर में उनका विनाश कर देते हैं। जब उन्होंने देखा कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए पांडवों के पास बिल्कुल समय नहीं रह गया है, तो उन्होंने प्राण को भी तोड़ते हुए तुरंत अपना अस्त्र उठा लिया। यद्यपि कुरुक्षेत्र का इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि अपना प्राण तोड़ते हुए भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र का जो उनकी ओर आ रहे थे पांडव उनका क्षमन किया। और आगे कहते हैं श्लोक नंबर 14 में, अंतःस्थ सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरि स्वमायया वृणोद्गर्भं वैराग्या कुरु तन्तवे। अंतःस्थ सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरि स्वमायया वृणोद्गर्भं वैराग्य कुरु तन्तवे। अंतःस्थ सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरि स्वमायया वृणोद्गर्भं वैराग्य कुरु तन्तवे। अंतस्थ यानी कि भगवान जो हैं वो सबके हृदय के अंदर वैसे ही रहते हैं, है ना। भगवान परमात्मा के रूप में हमारे सबके अंदर हैं, अंतस्थ वो अंदर रहते हैं सर्वभूतानाम समस्त जीवों के। आत्मा योगेश्वर है, आत्मा परमात्मा के रूप में योगेश्वरा यानी समस्त योगियों के स्वामी हैं वो हरि। हरि यानी परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जो समस्त जीवों के संकट को हरण करते हैं। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि यदि वो समस्त प्राणियों के अंदर वैसे ही रहते अंतस्थ सर्वभूतानां, तो फिर उनको उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करने की क्या आवश्यकता थी? गर्भ में प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, वो तो अंदर वैसे ही रहते हैं, फिर तो उनको वैसे ही बाहर के भगवान बाहर से उनकी घर की रक्षा नहीं कर सकते थे? वो कर सकते थे, परंतु वो इस बच्चे से भगवान इतना स्नेह करते थे कि वो उसको अपना सुंदर दर्शन देने के लिए सुदर्शन चक्र के साथ, वो चाहते थे, भगवान चाहते थे कि ये परीक्षित संसार में आने से पहले मेरा दर्शन करे, और भगवान इसके लिए अपने उस शुद्ध वैष्णव भक्त को दर्शन देने के लिए भगवान गर्भ के अंदर चले गए, ताकि जीवन के आरंभ में ही वो परीक्षित महाराज जो है वो भगवान श्री कृष्ण को सबसे पहले देखे। भगवान वास्तव में भगवान को परीक्षित की रक्षा करने के लिए उसके उत्तरा के गर्भ में जाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन भगवान जानते थे। यहाँ पर बहुत ही विशेष बात सुख गोस्वामी बता रहे हैं कि भले ही अंतस्थ सर्वभूतानां, भले ही वो समस्त भूतों के समस्त जीवों के अंदर रहते हैं, आत्मा योगेश्वर हरि, लेकिन फिर भी भगवान योगेश्वर है, भगवान महायोगेश्वर है, अर्थात योग की समस्त शक्तियां भगवान श्री कृष्ण के अधीन है। भगवान को उनके गर्भ में जाने के लिए कोई अलग से चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं है। वायु के समान सूक्ष्म बनकर, जैसे योग की कैसी शक्तियां होती हैं, आप छोटे से छोटे हो सकते हो, बड़े से बड़े हो सकते हो, भारी से भारी हो सकते हो, और हल्के से हल्का हवा की तरह उड़ सकते हो, तो वायु के समान सूक्ष्म बनकर भगवान उत्तरा के घर में प्रवेश कर गए। नासिका के द्वारा भगवान उत्तरा के हृदय में प्रवेश कर गए, और साथ में भगवान अपनी गदा और सुदर्शन चक्र भी ले गए। और भगवान उस समय, भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है आयुध की, लेकिन यहाँ से भगवान की भक्त वत्सलता झलकती है कि जिस प्रकार जब किसी माता के बच्चे के ऊपर, संतान के ऊपर कोई संकट आता है, तो माता कैसे व्याकुल हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता, वो संपूर्ण जितनी उसकी शक्ति होती है वो सारी शक्ति के साथ अपनी संतान की सुरक्षा करने की चेष्टा करती है। तो भगवान भी उस समय अपना भगवत्व और प्रवेश करके ब्रह्मास्त्र को विफल कर दिया। वास्तव में ये भगवान की दया है। अनुवाद, सुख गोस्वामी कहते हैं, परम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं, अतएव कुरु वंश की संतति की रक्षा करने के लिए उन्होंने उत्तरा के घर को अपनी निजी शक्ति से आवृत कर दिया। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, परम योगी भगवान अपने परमात्मा रूप में पूर्ण अंश के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अथवा परमाणु के भीतर भी निवास कर सकते हैं, यानी कि छोटे से छोटा मॉलिक्यूल हो, एटम हो, हर किसी में भगवान निवास कर सकते हैं। अतएव उन्होंने महाराज परीक्षित को बचाने के लिए तथा महाराज कुरु के वंश की रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ को आच्छादित कर दिया। महाराज पांडव भी उनके वंशज थे, और धृतराष्ट्र तथा पांडव दोनों के ही पुत्र महाराज कुरु के वंशज थे, अतएव दोनों ही समान रूप से कुरु कहलाते हैं। अब यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि क्यों उनको कुरु कहा जाता था, क्योंकि पांडव और धृतराष्ट्र जो है वो कुरु वंश से थे, तो फिर पहले उनको कुरु ही कहा जाता, कौरव ही कहा जाता था, लेकिन अब क्योंकि ये महाभारत का युद्ध हुआ उसके बाद पांडव और कौरव अलग अलग, ये कुरु वंश कहा जाता था पहले इनको। तो वैराट्य कुरु तंते, वैराट्य मतलब विराट राज की जो पुत्री थी, कौन, उत्तरा, उसके विषय में कह रहे हैं, जब उनके ऊपर उनके गर्भ के अंदर कुरु तंते यानी कि कुरुओं का वंश बचाने के लिए भगवान उसके गर्भ के अंदर आच्छादित हो गए। और आगे भगवान श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र तथा पांडव दोनों के ही पुत्र महाराजा कुरु के वंशज थे। अतएव दोनों ही सामान्य रूप से गुरु कहलाते थे, लेकिन जब इन दोनों परिवारों में मन मलिन हो गया तो धृतराष्ट्र के पुत्र कुरु कहलाने लगे और पांडव के पुत्र पांडव कहलाने लगे। क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा पौत्र मारे जा चुके थे, अतएव इस वंश का अंतिम पुत्र कुरुपुत्र के नाम से अभिहित किया गया है। यहाँ पर कुरुपुत्र किसको कहा गया है? महाराज कुरु के आखिरी वंशज यानी परीक्षित महाराज की रक्षा करने के लिए भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए हैं। और यहाँ पर भगवान को महायोगेश्वर कहा गया है क्योंकि वो समस्त योगियों की जितनी योग शक्तियां हैं उनके महायोगेश्वर भगवान हैं। और इस तरह से भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए हैं। हम आगे बाद में पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अपनी साधना और अपनी सेवा को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।